الأسباب، فإن أبلغون البغي فوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولم يعمل مجيئه. جاء أتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من نبي من ابن أو نبي. فأتينا السماء الثانية
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور لایا گیا، سفید رنگ کا وہ جانور تھا، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور اس جانور کا نام براق تھا، البراقو. یہ مستقل جملہ ہے. براق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ برق، برق کے معنی بجلی، بجلی کی رفتار سے وہ چلتا ہے، اس لیے اس کو براق سے تعبیر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل امین کے ساتھ چلا. اب دونوں شکل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، جبرائیل امین بھی ساتھ میں سوار ہو گئے، یائی کہ جبرائیل امین لگام پکڑ کے چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم آ گئے پہلے آسمان پر. یہاں روایت میں اختصار ہے، اس لیے کہ مکہ المکرمہ سے نکلنے کے بعد کئی جگہوں پر رکنا ہوا، طور سینا پر بھی رکنا ہوا، مدائن صالح بھی رکنا ہوا، مدینہ منورہ بھی رکنا ہوا، مسجد اقصی میں بھی رکنا ہوا، کئی جگہوں پر رکنا ہوا. وہ سب چیزیں یہاں نہیں ہیں. سیدھا آ گیا کہ ہم سمائے دنیا پر پہنچے، یعنی پہلے آسمان کے اوپر پہنچے. دروازے بند تھے، آواز دی گئی، تلا دی گئی، تو اندر سے نگران ملائکہ نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ جبرائیل ہے. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیا گیا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا جی ہاں، ان کو بلایا گیا ہے. یہ جو جملہ ہے وقد ارسل الیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان کو آسمانوں کے اوپر بلایا گیا ہے؟ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے ان کو طلب کیا گیا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل امین ساتھ ہے، پھر بھی یہ ہر آسمان پر فرشتے کیوں سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو یہ جو سوال کیا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے اوپر خوشی کے طور پر سوال ہو رہا ہے. گویا ملائکہ بطور خوشی، بطور مسرت کے सवाल जवाब करके इजहार कर रहे हैं। हर आसमान पर जो मलाइका मुकर्रर हैं वो जिब्राइल अमीन से दरियाफ़ कर रहे हैं, जिब्राइल अमीन जवाब दे रहे हैं ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ बरी पर वो लोग अपनी मसर्रत खुशी का इजहार करें। इसलिए कि आसमानों के ऊपर जाना अल्लाह की इजाज़त और अल्लाह की तलब के बगैर हो ही नहीं सकता। जैसे कि नहायत मशगूल तालीम के दिनों में कोई तालिब इल्म घर जावे तो सब लोग पूछते हैं ने भाई ये छुट्टी लेकर गया, इसको छुट्टी मिल गई, हमें तो इस वक्त छुट्टी का तसव्वुर भी नहीं और इसको मिल गई। अब ये सवाल जवाब जो होता है ये बराए ताज्जुब हुआ करता है इस तरीके से। तो आसमान के फरिश्ते इस्तकबाल में कहते हैं कि मरहबम भी मरहबा वलनिअमल मजी उजा, आने वाला कितना शानदार है। तो मैं हज़रत आदम अलैहि सलाम के पास पहुंचा पहले आसमान पर, मैंने सलाम किया तो आदम अलैहि सलाम ने फरमाया मरहबा हो आपको बेटे और नबी। चूँकि आदम अलैहि सलाम तमाम बनु नौए इंसान के अब है, इसीलिए आपने इब्न कह कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। दूसरी रिवायतों में है कि आदम अलैहि सलाम की दाहिनी तरफ एक मखलूक है, जब वो उसको देखते हैं तो खुश होते हैं और दूसरी मखलूक बाईं तरफ है उनकी तरफ देखते हैं तो आपको रोना आता है। ये जो दाहिनी तरफ की मखलूक है ये आदम अलैहि सलाम की औलाद में मोमिनीन और जन्नती लोग हैं, और बाईं तरफ की जो मखलूक है ये आदम अलैहि सलाम की औलाद में काफिरीन और जहन्नमी हैं। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहि सलाम की जियारत वगैरह से फारिग होने के बाद जी
فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي.
फिर हम दूसरे आसमान के ऊपर पहुँचे, पूछा गया कि ये कौन है तो कहा कि जिब्राइल अमीन। सवाल हुआ आपके साथ कौन है तो कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनको बुलाया गया है? जिब्राइल ने कहा जी हाँ, फरिश्तों की तरफ से कहा गया मरहबा उनको। आने वाला कितना ही शानदार और अच्छा है। सो हम दूसरे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ हज़रत ईसा और यहिया दोनों से मुलाकात हुई, तो उन दोनों ने इस्तकबाल करते हुए कहा मरहबम बिका मिन अखीन व नबीन, कितने अच्छे हमारे भाई और नबी तशरीफ लाइए जी।
فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي.
फिर हम तीसरे आसमान पर पहुँचे। मालूम हुआ कि जो कानूनी और जाब्ते की कार्रवाई है वो तो हर जगह पूरी ही करनी होगी, चाहे जिब्राइल अमीन इमामुल मलाइका है और इमामुल मखलूकात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हर आसमान के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है उसकी तो तकमील करनी ही करनी है। तो हम तीसरे आसमान पर पहुँचे, पूछा कौन है तो कहा जिब्राइल। कौन आपके साथ है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनको बुलाया गया है? तो कहा जी हाँ। कहा मरहबा, आने वाला कितना शानदार है। तो मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम को मैं पहुँचा, मैंने सलाम किया, उन्होंने मरहबा कहा, और कहा कितने अच्छे मरहबा मेरे भाई और नबी तशरीफ लाए। दूसरी रिवायत में है कि उनको मैंने देखा कि शत्रुल हुस्न दिया गया है, यानी हुस्न और खूबसूरती का आधा हिस्सा दिया गया है। जी
فأتينا السماء الرابعة من السماء الرابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي.
फिर हम चौथे आसमान पर पहुंचे। सवाल हुआ कौन है, तो कहा जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन है, कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनको बुलाने के लिए भेजा गया है, बुलाया गया है, कहा जी हाँ। कहा मरहबा मरहबा, आने वाला कितना शानदार है, तशरीफ लाइए। तो मैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा, मैंने जाकर उनको सलाम किया तो उन्होंने कहा मरहबा, कितने अच्छे भाई और कितने अच्छे नबी तशरीफ ले आए। अब यहाँ बाद हजरात ने इश्काल किया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए मुनासिब ये था कि अख के बजाय इब्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, चूँकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद आलिया में हैं, यानी आपके नसबी ख़ानदान में बहुत ऊपर आते हैं, इसीलिए उन दोनों के लिए मुनासिब ये था कि वो इब्न का लफ्ज़ हुजूर के इस्तिक़बाल में इस्तेमाल करते। लेकिन जहाँ नसब में जद्द आला होने की हैसियत है, वहीं तमाम अंबिया आपस में अल्लाती भाई है, वो अल्लाती भाई वाली निस्बत भी लगी हुई है। इस निस्बत का एतबार करते हुए हज़रत नूह और हज़रत इदरीस ने भी अदब के तौर पर, लुत्फ़ और मेहरबानी के तौर पर अख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रहा ये कि हज़रत आदम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो इब्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो तो ज़ाहिर बात है कि आदम अलैहिस्सलाम कुल बनू नौए आदम के अब है, इसीलिए उनके लिए तो अब कहना इब्न कहना ही मुनासिब था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब और जद्द मोहतरम हैं, ये खुद हुजूर ने बतलाया है कि मैं तो अपने दादा हज़रत इब्राहीम की दुआ का समरा हूँ, उन्होंने मुझे काबतुल्लाह की तामीर के वक्त पर अल्लाह ताला से मांगा था, इस एतबार से यहाँ उनकी तरफ से इब्न का लफ्ज़ इस्तेमाल हो ये ज़्यादा मुनासिब था। बाकी दूसरे अंबिया ने अदब लुत्फ़ मेहरबानी और अंबिया आपस में अल्लाती भाई है, उस निस्बत की रियायत करते हुए अख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो हम पांचवे आसमान के ऊपर पहुंचे। जी
فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا
تو حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی، اب پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل، آپ کے ساتھ کون ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کو یہاں آنے کے لیے بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، کہا جی ہاں، انہوں نے بھی کہا مرحبا، بہت اچھے آنے والے شاندار آدمی آئے، تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے، میں نے جا کر حضرت ہارون علیہ السلام کو سلام پیش کیا تو انہوں نے کہا مرحبا، پیارے اچھے بھائی، پیارے اچھے نبی۔ ہر آسمان پر سلام کی ابتدا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہر آسمان پر. اس میں ایک بات ہے توازو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور توازو کے ہر آسمان پر پہنچ کر کے نبیوں کو خود سے سلام کیا. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ مجلس میں جانے والا سلام کرے، وارد باہر سے آنے والا وہ سلام کی ابتدا کرے، یہ بھی اس میں تعلیم ہو گئی. جی
فأتينا على السماء السادسة في هذا قيل جبرائيل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بكى فقيل ما أبقاك قال يا رب هذا الغلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي.
پھر ہم پہنچے چھٹے آسمان کے اوپر. اب دیکھیے ہر آسمان کے اوپر الگ الگ نبی کی زیارت اور ملاقات، سلام کلام نصیب ہو رہا ہے، تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء تو اپنی قبروں میں ہیں تو آسمان پر کہاں سے آ گئے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نبیوں کی روحوں نے شکل اختیار کی بدن والی الگ الگ آسمانوں پر. حقیقت میں تو یہ انبیاء کی ارواح ہے، لیکن انہوں نے الگ الگ شکل اختیار کر لی الگ الگ آسمان پر، ہر نبی کی زندگی والی شکل کے مطابق. تو ہر نبی کی دنیا کے اندر جو شکل تھی، اس شکل کے مطابق انہوں نے، ان کی ارواح نے الگ الگ آسمان کے اوپر شکل اختیار کر لی اور جسدی شکل میں وہ آ گئے، تو روح متشکل ہو گئی جسد عنصری میں دنیاوی شکل کے مطابق. گویا آسمانوں پر روح تھی اور بدن تو ان کی قبروں ہی میں تھے. دوسرا حل یہ کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مع الروح اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے الگ الگ آسمان کے اوپر حاضر کیے گئے، گویا کہ ان کی قبروں میں سے ان کی روح مع الجسد منتقل ہو کر الگ الگ آسمان پر پہنچ گئی اور وہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ہے. تو چھٹے آسمان پر پہنچے، سوال جواب ہوا، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. میں نے سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا مرحبا بھائی اور نبی مرحبا، تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کر کے جب میں آگے بڑھا ساتویں آسمان کی طرف، تو بقا موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے. پوچھا گیا حضرت آپ کیوں رو رہے؟ تو کہا اے میرے رب، حاضل غلام، یہ جوان، غلام کا معنی کر لو جوان، جس کو میرے بعد دنیا میں مبعوث کیا گیا، ان کی امت میں سے جنت میں لوگ داخل ہوں گے زیادہ بہتر ان لوگوں کے مقابلے میں جو میری امت میں سے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے جتنے افراد، جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ امت محمدیہ میں سے جنت میں داخل ہوں گے. اس بات کے اوپر مجھے رونا آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رونا کیا؟ تو اتنی بات ذہن میں رکھو अंबिया आपस में हसद की वजह से रोया नहीं करते कि एक नबी को फजीलत ज्यादा मिली, दूसरे नबी को फजीलत कम मिली, लिहाजा रोवे। ऐसा नबियों में नहीं हो सकता। इसलिए ये रोना, ये सवाल जवाब मुनाफसत हसद के तौर पर नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अखलाक जलीला फाजिला की दौलत से नवाजा है, लिहाजा वो इस तरह के तनाफुस हसद से बिल्कुल पाक हुआ करते हैं। गर्ज ये कि उम्मत मोहम्मदिया की तादाद जन्नत में जाने वालों की ज्यादा और उम्मत मूसवी के अफराद की तादाद कम, इसके ऊपर हजरत मूसा अलैहि सलाम को रोना आया, अपनी उम्मत पर रोना आया कि मेरी उम्मत के जन्नत में जाने वाले लोगों की तादाद कम है, उस पर रोना आया। इसलिए कि हर नबी की तमन्ना और आरजू ये होती है कि मेरी पूरे पूरी उम्मत जन्नत में चली जावे, मेरी पूरी उम्मत ईमान लाकर रहमत इलाहिया में दाखिल हो जावे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुखालिफिन भी होते हैं, मुनकिरीन भी हुआ करते हैं। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम का रोना इस पर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक बहुत बड़ा तबका जन्नत में जाएगा और मेरी उम्मत में से बहुत कम लोग जन्नत में जाएंगे। तो अपनी उम्मत के ईमान और आमाल की कमी के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोना आया। दूसरी बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजल गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई तौहीन तहकीर के तौर पर ये लफ्ज नहीं है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तौहीन की हो, तहकीर की हो, नहीं। बल्कि इसका मकसद क्या है, बड़ी उम्र वाले लोग अपने से कम उम्र वालों को इस तरह के अल्फाज से खिताब किया करते हैं। दूसरी तौजी क्या, मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक लंबी उम्र बनी इसराइल की हिदायत के लिए सर्फ की और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अभी 51-52 साल की उम्र अपनी उम्मत के लिए सर्फ की है। चूंकि मेराज के वक्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 51-52 साल की थी, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली और नबूवत के 10 साल के बाद 11 साल बाद मेराज की सआदत हासिल हुई। तो हजरत मूसा चूंकि लंबी उम्र पा चुके थे और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उस उम्र में नहीं थे, इस एतबार से यहां लफ्ज गुलाम को इस्तेमाल किया गया। नंबर 3, अरबी मुहावरे के अंदर जब तक इंसान के अंदर कुव्वत और ताकत हो वहां तक उसको जवान, गुलाम, फता इस तरह के अल्फाज बतौर ताबीर के कहे जा सकते हैं। एक बड़ी उम्र वाला आदमी भी जवान जैसा हो, ताकतवर हो, तो अभी उसको वो लोग गुलाम, फता इस तरह के अल्फाज से ताबीर करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं 50-60-70 साल की उम्र में भी ऐसे हेल्थी और ऐसे तंदुरुस्त होते हैं जैसे कि जवान हुआ करता है, और बास जवान जवानी के अंदर बूढ़े जैसे हुआ करते हैं। तो अहले अरब इस तरह की ये इस्तेला इस्तेमाल करते हैं, इस एतबार से कहा गया यहाँ पर लफ्ज़ गुलाम। ये सब तौजीहात है, बहरहाल यहाँ तहकीर मुराद नहीं है। एक और बात इसमें यह भी है कि कोई आदमी कम उम्री के अंदर बड़ा कारनामा अंजाम दे देवे, तो उसके लिए भी इस तरह के मुअज्जज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अरे ये जवान तो अजीब कारनामे करता है, अभी तो आजकल का छोकरड़ा है, और देखो ना इसने जो है ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, हम बुढ़ापे में पहुंच करके भी ये काम नहीं कर पाए। तो कोई आदमी कम उम्र के अंदर बहुत सारे कमालात हासिल कर ले, उसके लिए भी बतौर एजाज के ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जी
فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولم يأمن مجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي
फिर हम सातवें आसमान के ऊपर पहुंचे, पूछा गया कौन है, कहा जिब्रील अमीन, कौन है आपके साथ, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा उनको बुलाने के लिए भेजा गया, हाँ हाँ हाँ। फौरन सातवें आसमान वालों ने मरहबा किया, क्या ही शानदार आने वाले शख्स यहां तशरीफ लाए। तो सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस सलाम की खिदमत के अंदर में हाजिर हुआ। अब यहाँ एक बात जहन में रखना, ये जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ रिवायत नकल की है, हर आसमान पर जिन जिन नबियों के नाम की तायीन है, ये एक मजबूत रिवायत से इन्होंने यहाँ पेश किया है। दूसरी रिवायतों में और तरतीबें भी आई है अम्बिया अलैहिस्सलाम की मुलाकात के सिलसिले के अंदर। तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने सलाम किया, तो उन्होंने कहा मरहबा बेटे और नबी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहते मामूर की दीवार से टेक लगा करके तशरीफ फरमाते, इसलिए कि दुनिया में उन्होंने काबा बनाया, तो अल्लाह ताला ने वहां पर भी उनको आसमान का काबा अता फरमाया। तो मेरे सामने बैते मामूर को बुलंद किया गया, जाहिर किया गया, करीब किया गया, रुफिया के तीनों तर्जुमे हैं। बैते मामूर को मेरे सामने बुलंद किया गया, मेरे सामने वाजे किया गया, मेरे करीब किया गया। दुनिया के काबा के मुकाबले में ये सातों आसमान पर काबा है, इसका दूसरा नाम है दुराह, दुआद के साथ, और ये मलाइका का काबा है। मैंने जिब्रेल को पूछा कि ये क्या है, तो फरमाए कि ये बैते मामूर है, वल बैतिल मामूर, उसमें हर दिन 70,000 मलाइका नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तवाफ करते हैं। इज़ा खरजु लम यऊदु आखिर मा अलैहिम, आखिर मा अलैहिम, जब वो निकलते हैं, यानी एक मर्तबा इबादत करके कोई फरिश्ता निकल गया तो दोबारा लौट के नहीं आता है, ये इनका आखिरी लुकूल होता है। वह हर फरिश्ते को एक ही मर्तबा वहाँ इबादत करने की सआदत हासिल होती है। इससे अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह के फरिश्ते कितनी बड़ी तादाद में होंगे कि रोज़ाना नए नए 70,000 फरिश्ते बैते मामूर का तवाफ करते हैं। एक फरिश्ते ने एक मर्तबा तवाफ इबादत कर ली, कयामत तक उसका दूसरी मर्तबा नंबर आएगा नहीं। तो कितनी बड़ी तादाद होगी मलाइका की। और दूसरा, इंसान अपनी सआदत मंदी को सोचे कि हम जितनी मर्तबा चाहे बैतुल्लाह का तवाफ उमरा कर लेवे, अल्लाह जब मौका देवे, मलाइका को एक ही मर्तबा बैते मामूर के तवाफ की सआदत हासिल होती है। जी
فرفع لي البيت المعمور فسألت جبرائيل فقال هذا البيت المعمور يسلي فيه كل يوم 70,000 ملك فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخذ ما عليه فرفعت إليه سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبرائيل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل.
उसके बाद मेरे सामने सिदरतुल मुंतहा लाई गई, यानी ऐसी बेरी का दरख्त कि मलाइका का इल्म, मलाइका की आमदो रफ्त वहां जाकर मुंतही हो जाती है। मलाइका का इल्म और मलाइका की आमदो रफ्त वहां जाकर मुंतही हो जाती है। उसके आगे न फरिश्ते जा सकते हैं, न उसके आगे के अहवाल मलाइका को मालूम है, इसलिए उसका नाम सिदरतुल मुंतहा रखा गया है। मुंतहा के माने एंड, अंतिम स्थान, बेरी, आखिरी हद बेरी। वो उसके बेर जैसे के मकामे हजर के मटके हो, ऐसे ऐसे उसके बेर थे। बाद हजरात कहते हैं कि ये मकाम हजर मशहूर मकाम था अरबों के लिए, मदीना के करीब में था, वहाँ के मटके मशहूर थे, तो बड़े बड़े मटकों जैसे बेर उसके ऊपर लगे हुए थे और उसके पत्ते हाथियों के कानों की तरह थे। ये हाथी के कान से जो तशबीह दी गई ये शक्ल में दी गई है, मिकदार में नहीं, इसलिए कि हाथी के सिर्फ 2 सुपड़े जैसे कान होते हैं और सिदरतुल मुंतहा के ऊपर बहुत सारे पत्ते हैं, इसीलिए मिकदार में तशबीह नहीं है बल्कि ये तशबीह दी गई है शक्ल सूरत के अंदर। और उस बेरी की जड़ के अंदर 4 नहरें हैं और वो बेरी उस रात में जगमगा रही थी, सोने के पतंगे उसके ऊपर बैठे हुए थे। ये मलाइका किराम थे जो पतंगों की शक्ल के अंदर पूरी बेरी के ऊपर छाए हुए थे, जमाले मुस्तफवी की जियारत करने के लिए ये उस सिदरतुल मुंतहा के ऊपर बैठे हुए थे। उसकी जड़ में, सिदरतुल मुंतहा की जड़ में 4 नहरें बह रही है, 2 नहरें बातिनी हैं यानी दुनिया में जाहिर नहीं है, जन्नत में जाहिर है। बातिनान का क्या मतलब? 2 नहरें दुनिया में जाहिर नहीं है, वो जन्नत में जाहिर है। एक है सलसबील और दूसरी है कौसर। सलसबील तो जन्नत में, कौसर मैदान महशर के अंदर। ये 2 नहरें और 2 नहरें जाहिरी यानी जाहिरी दुनिया के अंदर नजर आती है। तो मैंने जिब्राइल अमीन को पूछा तो जिब्राइल ने बतलाया ये जो बातिनी नहरें हैं यानी जो दुनिया में जाहिर नहीं है, ये दोनों सलसबील और कौसर जन्नत में है और दोनों जाहिर में नजर आने वाली एक फुरात नदी है जो इराक में बगदाद से बहती है और दूसरी मिस्र का दरियाए नील है। जी
ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت على حتى فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما شرعت قلت فرضت علي 50 صلاة فقال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسره فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 5 فقال مثله
बस। फिर आगे भी रिवायत में इख्तिसार है सिदरतुल मुंतहा के बाद क्या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, मकामे सरीखुल अकलाम पर पहुंचे जहां कलमों के चलने की आवाज आ रही थी, वहां पहुंचे। वो क्या चीज थी? वही तकदीर लिखने वाला कलम, तकदीर के लिखने के अंदर मशगूल था, वहाँ पहुँचे। आपने लोहे महफूज की भी जियारत फरमाई। फिर एक सब्ज रंग का मलमली विसादा तकिया गद्दे जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाया गया और उसके ऊपर सवार होके आगे की सारी मंजिलें आपने तय फरमाई। चूंकि सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल अमीन है, वहां जाकर फिर जिब्राइल अमीन साथ में नहीं है, इसलिए आगे की मंजिलें आपने अकेले तय फरमाई। और मकाम सरीखुल अकलाम, लोहे महफूज, अर्श व कुर्सी, ये सारी चीज़ों की जियारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले फरमाई। फिर जनाब इलाही में हाजिरी हुई, तीन तोहफे मिले, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाज़ें फ़र्ज की गई। बारी ताला से कलाम की सआदत हासिल हुई और फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। उसी तरतीब से वापसी हो रही है, सातवें आसमान पर पहुँचे, फिर छठे आसमान पर पहुँचे, तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, क्या लाए क्या मिला, लेकिन कलीमुल्लाह सिफत कलाम का मज़हर उन्होंने पूछ ही लिया, क्या लेकर आए, क्या तोहफा मिला बताओ तो सही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों तोहफे बतलाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अना अअलमु बिन्नास मिनका, मैं दुनिया के इंसानों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ आपके मुकाबले में। आपको दुनिया में 51-52 साल की उम्र हुई, नबुवत मिलने के बाद अभी 11-12 साल हुए, तजर्बा कम है अभी आपको लोगों से। मैंने मिस्र में बनु इसराइल को, किप्तियों को आजमाया, फिर वहाँ से चले तो सीना में आजमाया, वहाँ से चले पार समंदर पार, सारे बहुत आजमाया है मैंने दुनिया के लोगों को, इसीलिए कि इंसानों के अहवाल से मैं तुमसे ज़्यादा वाकिफ हूँ। आलजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा, मुझे बनी इसराइल का बड़ा सख्त तजुर्बा हुआ है, बहुत सख्त मामला हुआ है मुझे बनी इसराइल का। कि उस ज़माने में तीन नमाज फ़र्ज थी, फिर भी वो नमाज पढ़ने के अंदर आगे पीछे होते थे बनी इसराइल, तीन नमाज पढ़ने की फिर भी वो आगे पीछे होते थे। मुझे सख्त तजर्बा है बनी इसराइल का, यकीनन आपकी उम्मत 50 नमाज की ताकत नहीं रखती। बनी इसराइल कदीम ज़माने में वो तीन नमाज नहीं पढ़ सके, तो आपकी उम्मत कहाँ से 50 नमाज पढ़ेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। اللهم رب هذه الدعوة تعالى صلاة القائمة في سيدنا الدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي أعطاه فارزقنا شفاعته يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم فإن أمتك لا تطيقه محمد صلى الله عليه وسلم آپ کی امت 50 نماز کی طاقت نہیں رکھے گی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو واٹس ایپ بھی نہیں تھا, پھر بھی 3 نماز پڑھنے کے فافے تھے. کہ آپ کی امت کے زمانے میں انٹرنیٹ ہوگا, گوگل ہوگا, پھر کہاں سے وہ لوگ نماز پڑھ سکیں گے. فرجی الی ربک, جائیے جہاں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوئی, گفتگو ہوئی, وہاں واپس جائیے اور اللہ سے سوال کیجیے. فرجات, میں واپس گیا اللہ کی بارگاہ, سوال کیا میں نے, اللہ کچھ کمی کر دو. امت کے لیے بار بار تشریف لے گئے تکفیف کرانے کے لیے, تو 40 کر دے. پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی اور واپس بھیجا, 10 کی تکفیف کر کے 30 رہ گئے. پھر آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات کہی اور پھر بھیجا, تکفیف کرا کے 20 ہو گئی. پھر آئے, موسیٰ علیہ السلام سے وہی بات چیت ہوئی, 10 باقی رہ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات کہی, پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے, 5 باقی رہ گئے, 5 کی کمی ہو گئی. اب یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لو, تکفیف کتنی کتنی ہوئی. یہاں روایت میں 10 کا تذکرہ آ رہا ہے. دیکھو, 50 تھی, 10 کم ہوئی 40, 40 تھی, 10 کم ہوئی 30, 10 کم ہوئی 20, 10 کم ہوئی 10. 10 کی کمی کا یہاں روایت میں تذکرہ آیا ہے, اور آخری مرتبہ میں 5 کی کمی کا تذکرہ آیا ہے. یہ روایت یہاں یہ بتلا رہی ہے. دوسری روایتوں کے اندر 5 کی کمی کا ذکر آیا ہے کہ ہر مرتبہ میں 5 نمازیں کم ہوئی. نمبر 3, بعض روایت میں 15 کا بھی تذکرہ آیا ہے, 15 کی کمی. تو 15 × 3 = 45, آخر میں صرف 5 باقی رہ جائے گی. ایک روایت میں لفظ شطر بھی آیا ہے, اور شطر کے معنی آتے ہیں کچھ, ذرا سا, تھوڑی تھوڑی کمی ہوئی. تو ان مختلف روایتوں کی توجیہ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرکزہ نے یہ کی ہے کہ جہاں 5 سے زیادہ مرتبہ کی بات آئی ہے, 10 یا 15, تو راوی نے متعدد مرتبہ کو جمع کیا ہے. راوی نے متعدد مرتبہ کو جمع کیا ہے, یعنی 5 کر کے تکفیفات تو ہوئی, لیکن راوی نے جب ذکر کیا تو ذکر کرتے وقت کے اوپر 2 مرتبہ کو جمع کر کے راوی نے 10 کہا, 3 مرتبہ کو جمع کر کے راوی نے 15 کہا. ایک توجہ یہ ہے, متعدد بار کو جمع کر کے راوی نے کبھی 10 کی تعبیر 2 مرتبہ جمع کرنے کو, 3 مرتبہ جمع کرنے کو 15 کی تعبیر دی. ایک دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ ابتداءً 10 نمازوں کی تکفیف ہوئی اور انتہاءً 5 نمازوں کی تکفیف ہوئی. یہ بھی ایک روایت ہے. بہرحال 45 نمازوں کی تکفیف ہو گئی اور صرف 5 نماز باقی رہی. اس مرتبہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی رائے تو وہی تھی, 5 بھی بہت ہے, جاؤ نے تکفیف کرا کے آؤ, 5 میں بھی کچھ کمی کی درخواست کرو. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں اب تو مجھے شرم آتی, بعض روایت میں لفظ ہے مجھے شرم آتی ہے. شرم کے 2 مطلب لے لو, एक मतलब अल्लाह के एतबार से, दूसरा मतलब उम्मत के एतबार से। चूंकि हर मर्तबा पांच पांच की तकफीफ हुई, अब सिर्फ पांच बाकी है, और अब जाने का मतलब क्या है कि पांच की भी माफी करवा के क्या नमाज जीरो बाकी रखे? हर मर्तबा पांच पांच कम हो रही है, आखिर में पांच बाकी रह गई। अब जाने का मतलब क्या है कि पांच भी खत्म करवा देवे और नमाज जीरो कर देवे? ये है बारी ताला के साथ शर्म। तो जब तक अल्लाह सुबहानहु व ताला ने चाहा, पहले नौ मर्तबा में, वहां तक हुजूर ने शर्म महसूस नहीं की, और अब मंशे इलाहिया के मुताबिक अब जाने से हुजूर को शर्म महसूस हुई कि अब तो सिर्फ पांच बाकी रह गई है, अब किया जावे। ये हो गई शर्म बारी ताला के एतबार से कि पांच पांच की तकफीफ करके बिल्कुल खत्म करवा देवे क्या नमाज को। और अल्लाह ताला ने जब तक चाहा हया महसूस नहीं हुई, जब चाहा हया महसूस हुई। उम्मत के एतबार से हया ये होगी कि अगर ये पांच में भी तकफीफ करवा के जीरो करवा दूं तो अपनी उम्मत के लिए क्या तोहफा लेकर के जाऊं, कि मेराज में जाकर के आए क्या तोहफा लाए, एक भी चीज इबादत की नहीं लेकर के आए, तो उम्मत के लिए खाली हाथ जाने में मुझे शर्म आ रही है, इसीलिए अब मैं बारी ताला की बारगाह में जाना नहीं चाहता। और पांच नमाज बाकी रह गई। फकाल मिसलहु, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तो इस मर्तबा भी यही कहा था कि वापिस जाओ, उम्मत पांच भी नहीं पढ़ सकेगी, भारी पड़ेगी उम्मत को पांच। कुल तु सल्लम तु, मैं मान लेता हूं, मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, यानी अब पांच में तकफीफ नहीं करवानी है, अब तो तस्लीमो रजा, हुक्म इलाही के सामने अपनी तस्लीमो रजा, अब मैं कमी नहीं करवाऊंगा। बस जब हुजूर ने ये जुमला कहा सल्लम दो कि तस्लीमो रजा, अब मैं कम करवाने नहीं जाऊंगा, तो ऐलान हुआ मैंने फैसला कर लिया है, मैंने मेरे फरीजे के बारे में, यानी अब मेरा फैसला है कि बंदों को पांच पढ़नी है, और मैंने मेरे बंदों से तकफीफ कर दी, लेकिन मैं मेरे बंदों को हर नेकी का दस गुना ज्यादा दूंगा। गोया अदा करने के एतबार से पांच, अजर और सवाब के एतबार से पचास। बाज़ रिवायत में है कि ये बात आई मा युबद्दलुल कौलु लदैया, मेरे यहां बात नहीं बदलती, यानी मेरी बात पचास की थी तो पचास ही रहेगी, पढ़ो पांच लेकिन सवाब ले लो पचास का। अब इस रिवायत के बारे में एक जुमला कि हजरत हसन बसरी का सीमा हजरत अबू हुरैरा से साबित नहीं है, तो फिल बैतिल मामूर वाले लफ्ज के अंदर जो है इनको शक है कि ये लफ्ज बैत मामूर वाला था के नहीं था। बहरहाल इतनी लंबी रिवायत लाए एक ही मकसद, जिब्राइल का इस बात, हर आसमान पर फरिश्तों का इस बात, मलाइका की बात चल रही है तो मलाइका के इस बात के लिए इमाम बुखारी ये मेराज की रिवायत लाए। जाइए तशरीफ ले जाइए।